ये आकाशवाणी है। अब आप प्राची प्रिया से समाचार सुनिए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश के औद्योगिक परिदृश्य को बदलने के लिए राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के तहत 12 नए ग्रीनफील्ड औद्योगिक स्मार्ट शहरों को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में कैबिनेट बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इन औद्योगिक क्षेत्रों में संयुक्त अनुमति निवेश 28,602 करोड़ रुपए होगा। उन्होंने कहा इन परियोजनाओं से 10 लाख प्रत्यक्ष और 30 लाख अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे। मंत्रिमंडल ने 234 नए शहरों में 730 निजी एफएम चैनलों की ई नीलामी कराने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। इस निर्णय से मातृभाषा में स्थानीय सामग्री के प्रसारण को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। स्वीकृत शहरों में कई आकांक्षी जिले हैं और कुछ वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित भी हैं। श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल के निर्णय से श्रेणी 2 और 3 के शहरों में एफएम रेडियो की पहुंच बनेगी। मंत्रिमंडल ने केंद्रीय क्षेत्र की योजना कृषि अवसंरचना कोष के विस्तार को भी मंजूरी दे दी। इससे देश में कृषि क्षेत्र से जुड़ी बुनियादी सुविधाएं मजबूत होगी और किसानों को मदद मिलेगी। कृषि अवसंरचना कोष किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की राशि के साथ वर्ष 2020 में स्थापित किया गया था। आर्थिक मामलों की कैबिनेट बैठक समिति ने 6,456 करोड़ रुपए की लागत से रेलवे की 3 महत्वपूर्ण परियोजनाओं को मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि ये परियोजनाएं यात्रा को आसान बनाएंगी, लॉजिस्टिक्स लागत, तेल आयात और कार्बन उत्सर्जन को कम करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल प्रगति की 44वीं बैठक की अध्यक्षता की। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में प्रगति की यह पहली बैठक थी। बैठक में 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई। इनमें सड़क संपर्क और रेल की 2-2 परियोजनाएं तथा कोयला, बिजली और जल संसाधन की 1-1 परियोजना शामिल है। इनकी लागत 76,000 करोड़ रुपए है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार के प्रत्येक अधिकारी को संवेदनशील बनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि परियोजनाओं में देरी से न केवल लागत बढ़ती है बल्कि जनता परियोजना के अपेक्षित लाभों से भी वंचित हो सकते हैं। आपातकालीन प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग पर भारतीय और रूसी आयोग की दूसरी संयुक्त बैठक कल मॉस्को में आयोजित की गई। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने किया। बैठक के पहले दिन 2025-26 के लिए आपातकालीन प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग पर आयोग की कार्य योजना पर हस्ताक्षर किए गए। ये बैठक भारत और रूस के बीच पिछले समझौतों को क्रियान्वित करने की रणनीति बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। आपातकालीन प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग पर भारत रूस संयुक्त आयोग की पहली बैठक 2016 में नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। निर्वाचन आयोग ने हरियाणा भाजपा को चुनाव प्रचार के लिए बच्चे के इस्तेमाल पर नोटिस जारी किया है। भाजपा की हरियाणा इकाई ने सोशल मीडिया एक्स पर जारी एक वीडियो पोस्ट में बच्चे का इस्तेमाल किया था। इस आयोग ने गंभीरता से लेते हुए प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडोली को नोटिस जारी किया और तत्काल सुधारात्मक कदम उठाने को कहा है। आयोग ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष को गुरुवार शाम 6 बजे तक जवाब देने को कहा है। चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार राजनीतिक दलों और चुनावी अधिकारियों द्वारा किसी भी चुनाव प्रक्रिया में बच्चे को शामिल नहीं किया जाना चाहिए। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने हेमंत सोरेन सरकार में मंत्री पद और झारखंड मुक्ति मोर्चा के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। पार्टी अध्यक्ष शिबू सोरेन को लिखे पत्र में उन्होंने कहा कि पार्टी की कार्यशैली और नीतियों ने उन्हें पार्टी छोड़ने के लिए मजबूर किया है। चंपई सोरेन कल भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। उन्होंने झारखंड विधानसभा सरायकेला सीट से भी इस्तीफा दे दिया है। श्री सोरेन ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का उनका निर्णय झारखंड के लोगों के हित में है। फ्रांस की राजधानी पेरिस में पैरालंपिक खेलों का शानदार आगाज हुआ। भारत समेत 167 देशों के खिलाड़ियों में परेड के दौरान जबरदस्त उत्साह दिखा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।